ओम शांति।
वाणी चल रही थी 27 अक्टूबर 2002।
Yesterday, the vani of 27th October 2002 was going on.
तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी।
In the middle of the third page, the subject was going on.
मैं तो आता ही पतित शरीर में
हूँ। I do come into the impure body.
पतित शरीर में आता हूँ तो गुप्त है ना?
Since I come into the impure body, it is hidden, isn't it?
कृष्ण की तो बात ही नहीं।
It doesn't concern Krishna.
फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो? सोमनाथ का मंदिर बनाते हो?
Later, on the path of the religious devotion, you respect me so much. You build the Somnath temple.
कोई एक मंदिर थोड़ा ही होगा?
There won't be just one temple.
सोमनाथ का आज से 2500 साल पहले कोई एक मंदिर नहीं बना।
There wasn't just one Somnath temple built 2500 years ago.
जब राजा बनाता है तो राजा के साथ प्रजा भी मंदिर बनाती है।
When the king built the temple, the subjects also built the temples along with the king.
अनेक मंदिर होंगे, फिर उन्हें लूटा भी होगा।
There will be many temples. Then they would have been looted as well.
बनाते कब हैं और लूटते कब हैं?
When do they build and when do they loot them?
मंदिर बनाते हैं द्वापर के आदि में।
They build the temples at the beginning of the Copper Age.
और उस समय मुसलमानों का बोलबाला इतना जास्ती नहीं होता है।
At that time, the Muslims don't have a very high reputation.
जब कलयुग शुरू होता है तो कलयुग की शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण होता है भारतवर्ष।
When the Iron Age starts, at the beginning of the Iron Age, the first attack of Muhammad bin Qasim takes place in the country of Bharat.
फिर धीरे धीरे मुसलमानों का प्रभाव बढ़ता जाता है।
Later on, the influence of the Muslims increases gradually.
और 11वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण हो जाता है।
Then, in the 11th century, the attack on the Somnath temple takes place.
एक मंदिर थोड़े लूटते हैं।
They don't loot just one temple.
ऐसे अनेक बार आक्रमण हुए।
They say that the attacks took place several times.
सोमनाथ के मंदिर पर ही 17 बार आक्रमण हुआ।
The attacks on the Somnath temple itself took place 17 times.
खूब लूटा होगा।
They must have looted a lot.
तो सारी वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए।
You have come to know the entire unlimited history and geography.
बाप को कहते हैं knowledgeful.
The father is called knowledgeable.
सोमनाथ मंदिर बनाया, सोमनाथ मंदिर लूटा गया।
The Somnath temple was built. The Somnath temple was looted.
उसमें सारी हिस्ट्री आ गई। कैसे?
Did it contain the entire history? How?
सोमनाथ मंदिर माना?
The Somnath temple means
जो सोमनाथ पिलाने
वाला। A student is saying, the one who gives nectar to drink.
सोम माना चंद्रमा।
सोम means moon.
नाथ माना स्वामी।
नाथ means lord.
चंद्रमा का स्वामी कौन हुआ?
Who was the controller of the moon?
Yes.
Students are saying something.
चंद्रमा का स्वामी हुआ जिसका मंदिर बनाया गया सोमनाथ।
The controller of the moon was the one to whom the Somnath temple was built.
ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा।
The moon of knowledge, Brahma.
ब्रह्मा पहला पत्ता सृष्टि का।
Brahma, the first leaf of the world.
पहले पत्ते का स्वामी कौन?
Who is the controller of the first leaf? Students are saying something.
Ram Baliyatma. Prajapita.
The soul of Ram. Prajapita.
जिसमें शिव प्रवेश होता है.
In whom Shiva enters.
तो बताया.
So it was said that.
कि द्वापर के आदि में.
At the beginning of the copper age.
मंदिर बनता है. यादगार.
The temples, meaning the memorials, are built.
और कलयुग के आदि में. लूटा जाता है.
And at the beginning of the Iron Age, it was looted.
इसमें सारी हिस्ट्री समाई हुई है.
This contains the entire history.
History है 2500 साल की.
There is the history of 2500 years.
उससे पहले की हिस्ट्री है नहीं.
There isn't any history before this.
और उस हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए हो.
And you have come to know this history and the geography.
कि कैसे बीज सत्युग के आदि में सरसब जो होता है.
How the seed at the beginning of the golden age flourishes.
द्वापर के आदि में उसकी यादगार बनती है.
At the beginning of the copper age, the memorial of this is built.
बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं. उनमें ढेर सारा धन इकट्ठा किया जाता है.
Big temples are built. A lot of wealth is accumulated in them.
और कलयुग के आदि में वो मंदिर लूट लिया जाता है.
And those temples are looted at the beginning of the Iron Age.
तुम जान गए हो. बाप को कहते हैं नॉलेजफुल.
You have come to know. The father is called knowledgeable.
तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है.
Therefore, knowledge is given here as well.
यहाँ ज्ञान दिया जाता है.
Is knowledge given here?
जहाँ बाप है.
Where the father is present,
वहाँ ज्ञान भी दिया जाता है.
Knowledge is given as well.
पढ़ाई भी यहाँ पढ़ाई जाती है.
The teaching is given here too.
और ज्ञान है ही मनमनाभाव का.
And knowledge is just of मनमनाभाव.
इस बात की जानकारी.
The information of what?
मेरे मन में समा जा. मनमनाभाव. इस बात की जानकारी.
Merge in my mind. मनमनाभाव. The information about this topic.
ऐसे तो तुमने मतलब बिन्ना.
It is just each mouth gives a different opinion.
हर एक की अपनी अपनी मत अलग है. हर एक का अपना अपना ज्ञान अलग है.
Everyone has his own opinion. Everyone has his own knowledge.
लेकिन मेरे मन में अगर तू समा जाएगा.
But if you merge in my mind,
तो जो बाप है,
then the father who is there,
वो ही बाप की गति तेरी हो जाएगी.
The way of acting of that father will become yours.
बाप क्या है?
What is the father like?
निराकारी, निर्विकारी, निर्हंकारी.
Incorporeal, without vices, without ego.
तो इसको सदगति, इससे सदगति होती है.
So the true salvation takes place from this.
मनमनाभाव के ज्ञान से.
From the knowledge of मनमनाभाव.
पहले मनमनाभाव.
First मनमनाभाव.
मेरे में मन लगा दे. मेरे में मन को तिरोहित कर दे. अपने मन के संकल्पों को मेरे में समा दे.
Engage the mind in me. Make the mind vanish in me. Merge in me the thoughts of your mind.
फिर क्या होता है?
What happens then?
जब मेरे मन में अपने सारे संकल्पों को तिरोहित कर देगा तो तेरा जो भी कर्म होगा वो सब मेरे लिए होगा.
If you make all the thoughts of your mind vanish in me, then whatever you do will be for me.
मना पहले मनमनाभाव फिर मध्यादि.
Meaning, first, manmanabhav, then madhyajibhav.
Mat, mana mere, yaji, mana yajan karne wala, bhav, mana ho ja.
Mad means my, yaji means yajan karne wala, the one who sacrifices. Bhav means ho ja, let it become.
Mana jo bhi karma kare, wo mere liye kare.
That is to say, whatever task you would do, do it for me.
कोई भी कर्म इंद्रियों से कर्म करे, लेकिन मेरे लिए करे.
Through whichever organ you do the task, do it for me.
ये कब होगा?
जब
मन मना होगा.
When will it happen? When one becomes manmanabhav.
Manmanabhav se sadgati hoti hai. Kai kai ki sadgati hoti
hai. The true salvation takes place from manmanabhav. The true salvation of what takes place?
Manmanabhav honge to kai ki sadgati hogi.
If one becomes manmanabhav, the true salvation of what would take place?
Manabuddhi ki pehle sadgati hoti hai.
The true salvation of the mind and the intellect takes place first.
Buddhi sudhar jati hai, sankalp sudhar jate hai. Mere mein sankalp swaha ho jate.
The intellect improves, the thoughts improve. The thoughts are sacrificed in me.
Tirohit ho jate.
They vanish.
Aur man hai, sab indriyon ko control karne wali indri.
And the mind is the organ controlling all the organs.
मन कंट्रोल में आ जाता है.
If the mind is controlled,
तो और जो दस इंद्रियां हैं, उनकी भी सदगति हो जाए.
The true salvation of the other 10 organs takes place as well.
Yeah.
What?
अभी जो भी इंद्रियां हैं, वो दुर्गति की ओर है.
Now all the organs go towards degradation.
जब एक में मन लगा देंगे. तो सब इंद्रियों की सदगति हो जाएगी.
When we involve the mind in one, the true salvation of all the organs will take place.
टीचर और गुरु का पार्ट इकट्ठा चलता है.
The role of the teacher and of the guru goes on together.
क्या?
What?
ऐसे नहीं टीचर पढ़ाई पढ़ाना बंद कर देंगे जब सब गुरु का पार्ट चलेगा. नहीं.
It isn't that the teacher will stop teaching. When the role of the true guru will start. No.
जब तक जीना है, तब तक पीना है.
One has to drink as long as one is alive.
जब तक देहभान में मनुष्य आत्माएं जिंदा रहेंगी, तब तक ज्ञान जल पीती रहेंगी.
As long as the human souls remain alive in body consciousness, they will keep drinking the water of knowledge.
तो पढ़ाई भी चलती रहेगी. और सदगुरु के द्वारा सदगति का पार्ट भी चलता रहेगा.
The teaching will be carried on and the role of the true salvation through the true guru will be carried on.
सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम पढ़ाते हो.
You teach the history and the geography of the entire world.
सच्ची सच्ची nuns.
The real nuns.
Nuns किन्हें कहते हैं?
Who are called nuns?
कौन से धर्म में नंस होती है? जिसके धर्म में नंस होती है. सत्ती सत्ती नंस तुम हो. कैसे?
In which religion are there nuns? There are nuns in the Christian religion. You are the real nuns. How?
None.
None.
कोई भी नहीं.
There isn't anyone.
तो कौन है?
Then who is there?
कोई नहीं. एक शिव बाबा.
No one. One Shiv Baba.
तो सच्ची सच्ची तुम नंस हो क्योंकि तुम एक को याद करती हो.
So you are the real nuns because you remember one.
नंस को गले में क्रॉस पड़ा रहता है.
The nuns have the cross hung on the neck.
क्या?
What?
क्रॉस पड़ा रहता है. क्या मतलब?
The cross is hung on the neck. What does it mean?
क्राइस्ट ने क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया गया.
Christ was crucified.
तो वो भी कहते हैं.
So they also say.
वो भी ये यादगार अपने गले में लटका के रखती हैं.
They also hang their memorial on their necks.
कि हम भी कल क्रॉस पे चढ़ जाएं.
Meaning that we may be also crucified.
Yeah.
What?
बल क्रॉस पे चढ़ जाएं. लेकिन हम एक को नहीं छोड़ेंगे.
Even if we are crucified, yet we won't leave the one.
Christ को याद करती है ना?
They remember Christ, don't they?
वो समझते हैं Christ गॉड का बच्चा था.
They think that Christ was the child of God.
तो अकेला क्राइस्ट ही गॉड का बच्चा था क्या?
सो वॉज क्राइस्ट अलोन द चाइल्ड ऑफ गॉड?
क्राइस्ट गॉड का बच्चा तो और सब भतीजे हैं क्या?
If Christ is the child of God, are all the others the nephews?
तुम जानते हो?
You know.
Christ कोई गॉड का बच्चा नहीं था.
Christ wasn't any child of God.
ये तो उन्होंने कॉपी किया है.
They copied this.
Christ बाहर गॉड का बच्चा नहीं था. कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई है.
Christ wasn't the child of God. The zodiac of Christ and Krishna are matched.
Krishna God ka bachcha tha.
Krishna was the child of God.
Unhone Krishna ki sari baatein iske upar dhal di. Christ ke upar dhal di.
They applied everything concerning Krishna to whom? They applied it to Christ.
To wo samajhte hain Christ God ka bachcha tha.
So they think that Christ was the child of God.
Baap kehte hain Christ God ka bachcha nahi tha.
The father says Christ wasn't the child of God.
Christ to Dwapar Yug mein aaya?
Christ came in the Copper Age.
Dvaitavadi Yug mein aaya?
He came in the age of duality.
Bhagwan aakar ke Dvaitavadi Yug ki sthapna karega kya?
Will God come and establish the age of duality?
Bhagwan to Advait dharm sthapan karta hai.
God establishes the religion of non-duality.
अद्वैत युग की स्थापना करता है जहाँ एक धर्म एक राजा एक भाषा एक मत एक कुल सब कुछ एक ही एक.
He establishes the age of non-duality where there is one religion, one kingdom, one language, one system of opinions, one clan, everything is united.
सारी प्रजा की दृष्टि में एक ही समाया हुआ होता है.
Only one is merged in the eyes of all the subjects.
तो क्राइस्ट की आत्मा
So the soul of Christ
गॉड का बच्चा हो सकती है.
Can be the child of God.
क्या?
What?
क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा है.
The soul of Christ is the child of God.
लेकिन क्राइस्ट गॉड का बच्चा नहीं.
But Christ is not the child of God.
ये क्या बात है?
So what's the matter?
माना क्राइस्ट जब शरीर धारण करता है.
It means that when Christ takes on the body.
तो वो कोई गॉड से जन्म थोड़ी लेता है.
He doesn't take birth from God.
हाँ, आत्मा तो 500 करोड़ शिव बाप के बच्चे हैं.
Yes, regarding the souls, 5 billions are the children of God.
तो क्राइस्ट भी आत्मिक रूप में गॉड का बच्चा है.
So in the spiritual form, Christ also is the child of God.
ऐसे तो हम सभी गॉड के बच्चे हैं.
In this way, all of us are the children of God.
जैसे क्राइस्ट गॉड का बच्चा है वैसे हम सभी गॉड के बच्चे हैं.
Just like Christ is the child of God, in the same way, all of us are the children of God.
फिर हमारे में और गॉड में अंतर क्या है?
Then, what is the difference between us and God, Christ?
हम प्रैक्टिकल गॉड को पहचानते हैं.
We recognize God in the real life.
और क्राइस्ट प्रैक्टिकल में गॉड को पहचानता नहीं.
And Christ doesn't recognize God in the real life.
कृष्ण की आत्मा प्रैक्टिकल में गॉड का बच्चा बनती है.
The soul of Krishna becomes the child of God in reality.
जो गॉड का पार्टधारी है गॉड फादर का उसका प्रैक्टिकल में बच्चा बनती है.
He really becomes the son of the one who plays the role of God the Father.
भगवान भगवती का बच्चा बनती है.
He becomes the son of God and the Goddess.
और क्राइस्ट भगवान भगवती का बच्चा नहीं बनता.
And Christ doesn't become the son of God and the Goddess.
तो बाप आकर तीन धर्म स्थापन करते हैं.
So the father having come establishes 3 religions.
आकर के.
Having come.
ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण धर्म स्थापन करके चले जाते हैं.
It isn't that he comes into that body of Brahma and he goes away having only established the Brahmin religion.
तथागत ब्रह्म कुमार कुमार क्या समझते हैं?
What do so-called Brahma Kumars Kumaris think?
Shiva Baba Brahma Chaitanya mein aaya?
That Shiva Baba came into the body of Brahma.
Brahmana Dharma ki sthapna ho gayi.
And the establishment of the Brahmin religion took place.
Bal koi devata nahi bana.
Although no one became a deity.
Aur koi bhi kshatri nahi bana.
And no one became a kshatriya.
Kyunki abhi to result hi nahi nikla jo fail hai.
Because until now the results of those who failed weren't disclosed.
Final fail hone ka result nikle tab to pata chale kshatri kaun hai.
When the results of the final failure are disclosed, it will be known who is kshatriya.
To na kshatriyo ka result nikla na devtao ka result nikla.
So neither the results of the kshatriyas were disclosed nor were the results of the deities disclosed.
ब्राह्मण तो बने हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार.
They became Brahmins number wise according to their efforts.
तो जो ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बने हैं.
So those who become number wise Brahmins according to their effort.
उससे उन्होंने ये समझ लिया कि बस भगवान आकर के ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है.
They understood from this. That's it. God comes and establishes the Brahmin religion.
Baki devata banane ka kaam aur kshatri banane ka kaam hamara.
The rest, the work of creating the deities, the work of creating the kshatriyas belongs to us.
Yahan baap kya kehte hain? Main khud aakar ke teen dharm sthapan karke jata hu.
What does the father say here? I come myself and establish three religions.
ब्राह्मण धर्म भी मैं स्थापन करता हूँ ब्रह्मा के द्वारा.
I myself establish the Brahmin religion through Brahma.
और देवता धर्म भी मैं स्थापन करता हूँ किसके द्वारा.
And I myself establish the deity religion through whom?
शंकर.
Students through Shankar.
प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा देवता धर्म की स्थापना करता हूँ.
Through प्रजापिता ब्रह्मा I establish the deity religion.
Sampurna Brahman, so sampurna devata bante hain.
The complete Brahmins become complete deities.
Aur jo sampurna devata nahi ban pate, fail ho jate hain, wo
kshatri
bante hain.
And those who can't become complete deities, those who fail become kshatriyas.
Tum unche te unchi choti ke brahman ho.
You are the highest Brahmin of the north.
क्योंकि तुम ऊंचते हो कि विश्व की सेवा करते हो.
Because you do the service of the highest world.
ऊंचते ऊंचे विश्व कौन सा है?
Which is the highest world?
ऊंचते ऊंचे विश्व कौन सा है और नीचते नीचे विश्व कौन सा है?
Which is the highest world and which is the lowest world?
संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युग होता है.
A student is saying, in the confluence age, yes, in the golden confluence age, in the confluence age.
Hey, जहाँ भगवान आकर के सारी सृष्टि को अपनी मध्य नजर देखता है.
Here God comes and keeps the entire world in His view.
सारी सृष्टि उसकी नजरों के नीचे आ जाती है. वो है ऊंचे ऊंचे विश्व.
The entire world comes into his view. That is the highest world.
स्वर्णिम संगम युग में स्वर्णिम दुनिया की स्थापना होती.
In the golden confluence age, the establishment of the golden world takes place.
सोलह कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज की आत्माएं वहाँ निवास करती हैं.
The souls in the stage higher than the 16 celestial degrees reside there.
ऊंचते ऊंचे विश्व की सेवा तुम करते हो.
You do the service of the highest world.
मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो.
You give the human beings the knowledge of the soul.
तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है.
You souls receive the inheritance from the father.
तुम आत्मा को.
You souls.
इसे कहा गया.
To whom was it said? Students are saying, those who are sitting face to face.
सनोग बैठने वाले बच्चों से कहा तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है.
it was said to the children sitting face to face, "You souls receive the inheritance from the Father."
Christ ki atma ko baap se varsha nahi milta, fir kisse milta hai?
The soul of Christ doesn't receive the inheritance from the Father. From whom does he receive it?
हाँ, क्राइस्ट को जन्म देने वाला कोई तो होगा, नहीं नहीं, कोई बीज रूप आत्मा, कोई आधारभूत आत्मा है जिसमें वो प्रवेश करता है क्राइस्ट।
Students are saying something. Yes, there must be someone giving birth to Christ. Students are saying something. No, there is some seed soul, there is some root soul whom Christ enters.
उस क्राइस्ट को किसी से तो जन्म मिलता है, जिससे जन्म मिलता है वो बीज रूप आत्मा है क्रिश्चियन धर्म की।
That Christ is born from someone. The one from whom he is born is the seed soul of the Christian religion.
तो उससे वर्षा नहीं मिलता है।
So he doesn't receive the inheritance from him. From whom? From God the Father.
उसको वर्षा मिलता है उससे, उस बीज रूप आत्मा से।
He receives the inheritance from that one, from that seed soul.
बरोबर, बाप कल्प कल्प के संगम युग में वर्षा देने तुमको आते।
Every cycle the Father comes in the same way in the confluence age to give you the inheritance.
तुमको वर्षा देने बाप आते हैं और धर्म पिता डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं देते।
The father comes to give you the inheritance. The other religious fathers do not receive the inheritance directly from the father.
शास्त्रों में तो युग युग लिख दिए।
In the scriptures they wrote, he comes in every age.
कि भगवान युग युग आते हैं, हर युग में आते हैं।
God comes in every age.
तो हर युग में आते हैं तो चार अवतार होने चाहिए।
If he comes in every age, there should be four incarnations.
चार युग हैं।
There are four ages.
तो चार युग के अंत में आवेंगे तो चार अवतार होने चाहिए। उन्होंने कितने लिख दिए?
If he comes at the end of four ages, there should be four incarnations. How many did they write?
10 avatar likh diye, 24 avatar likh diye.
They wrote 10 incarnations, 24 incarnations.
Jainiyon ne bhi 24 avatar likh diye.
The Jains wrote 24 incarnations.
Jainiyon ne bhi copy kiye.
The Jains also copied it.
To ye to koi baat hi nahi banti.
It doesn't make any sense.
To kahan ki baat hai ye? Shastron mein jo likhi hui hai ki हर युग में आते हैं, संभवाम युग युग।
So what is written in the scriptures that he comes every age, संभवाम युगे युगे, which time does it concern?
संगम युग की शूटिंग पीरियड में जब चार युगों की शूटिंग होती है।
In this shooting period of the confluence age, when the shooting of the four ages takes place,
चार वर्णों की शूटिंग होती है, देवता वर्ण, शक्ति वर्ण, वैश्य वर्ण और सूर्य वर्ण की आत्माओं की शूटिंग होती है।
When there is the shooting of the four groups, there is the shooting of the souls from the group of deities, from the group of kshatriyas, from the group of vaishyas and from the group of shudras.
में भगवान हर युग की शूटिंग के अंत में विशेष रूप से प्रत्यक्ष होते हैं।
At that time, at the end of the shooting of each age, God is revealed in a special form.
तो शास्त्रों में युग युग लिख दिया है।
They wrote in the scriptures युगे युगे।
कल्प अक्षर बीच से निकाल दिए।
They removed the word cycle from them.
हर युग में चार अवस्थाओं की शूटिंग होती है।
The shooting of four stages takes place in every age.
चार अवस्थाएं जो है वही जैसे कि एक कल्प हो जाती है।
The four stages are like just one cycle.
तो कल्प शब्द निकाल दिया है इसलिए रोना पड़ गया।
So they removed the word cycle and that is why there was confusion.
उनका नाम ही है पतित पावन।
The name of that one is पतित पावन। the one who purifies the impure.
Inka nahi?
Not of this one.
Ye patit pavan nahi hai, kon? Brahma.
This one is not patit pavan. Who? Brahma.
Unka naam, jinke dwara paat bajta hai patiton ko pavan banane ka.
The name of that one, through whom he plays the role of purifying the impure.
Naam hai ki title hai?
Is it a name or a title? A student is saying, it is a title. Baba said, name.
Unka naam hi hai? Patit Pavan Sitaram kehte na?
The name of that one is Patit Pavan Sitaram. They say so, don't they?
So, yuga yuga aakriti kya karenge?
So, what will he do coming every age?
Patiton ko pavan aakar ke kab banavenge? Satyug mein.
When will he purify the impure ones? In the golden age?
Satyug mein to satopratanatmay hoti hai, 16 kala sampurna hoti hai. Vahan to patit hote hi nahi. Treta yug mein bhi patit nahi kahenge.
In the golden age, there are satopradhan souls, complete in the 16 celestial degrees. The impure is not present there. It won't be set impure for the silver age either. In the copper age, there are still 8 celestial degrees. Even over there they don't get overshadowed by the total eclipse in the form of impurity and degradation. When does it happen?
पूरे पतित बनते हैं, सब धर्म पतित बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ.
At the very end of the Iron Age, at the final time, when they get overshadowed by the eclipse in the form of impurity and degradation, when they become completely impure, when all the religions become impure, at that time I come.
तो मैं युग युग आकर के क्या करूँगा?
So, what shall I do coming in every age?
कल्प में एक बार आकर के पावन बनाकर के चले जाते.
He comes once in a cycle, purifies and goes away.
बार बार क्यों आएंगे?
Why should he come again and again?
जब एक बार पूरी पतित पने का ग्रहण लगे तो आऊं और सच्ची चक्र को पावन बना के और चला जाऊं.
I will come when they are overshadowed by the total eclipse, and having purified the world cycle, I will go away.
Sati chakra jo hai, wo sato pradhan, sato saman, raju aur tamo char avasthaon se guzarta hai.
The world cycle passes through the 4 stages. The stage dominated by the complete purity and goodness, sato pradhan. The stage of the universal purity and goodness, Sato Samanya. The stage of the semi-purity and goodness, Rajo. And the stage dominated by darkness and ignorance, Tamo Pradhan.
Tamo Pradhan mane tab to main use Sato Pradhan aakar banau.
Only when it becomes Tamo Pradhan, I will come and make it Sato Pradhan.
To baap kehte hain?
Therefore the father says,
main pavan banakar jata hu.
Having purified the world, I go away.
Mujhe talaq mat dena.
Don't give me divorce.
Dhamki de rahe. Kya?
Is he threatening us? What?
Patiton ko pavan bana karke jata hun. Mere ko talaq mat dena. Talaq nahi dena.
Having purified the impure, I go away. Don't divorce me.
Baba ko dar lag raha
hai. Baba is being afraid.
Aajkal istriyan pati ko talaq de deti hain.
Today the women divorce their husband.
Waise dekha jaye to Hindu nari pati ko kabhi talaq nahi deti thi.
Looking at things just like this, the Hindu woman never used to divorce the husband.
Pehle aur abhi?
Before. And now?
अभी हिंदू रानियां भी पति को तलाक दे देती.
Now also the Hindu woman divorces the husband.
क्या बात हो गई?
What happened?
पहले तलाक नहीं देती थी.
They didn't divorce before.
अभी तलाक दे देती है.
नाउ दे डिवोर्स.
बाबा को भी डर लग रहा है कहीं मेरे को शरण रोने के बाद कहीं मेरे को ना तलाक दे दे.
Baba also is being afraid that having surrendered to me, they may divorce me. Students are saying the color of the company. Yes. Why do they divorce? They didn't divorce before. Now they do. Why? It is because the color of the company of other religions had an effect on them. They became influenced by the other religions. Therefore, they divorce. Looking at things just like this, the Hindu woman never used to divorce the husband. Certainly, you have to listen to the murlis. What?
दूसरों की बातें, दूसरे धर्म वालों की बातें सुन सुन करके तलाक देना सीख लिया.
Listening to the other talks, to the talks of the followers of the other religions, you learned to divorce.
लेकिन तुमको क्या करना है? तुमको तो बाबा की मुरली सुनना
है. But what should you do? You have to listen to Baba's murlis.
इसका नाम क्या है? मुरली.
What is its name? Murli. It will turn your intellect.
Murli. क्या करेगी?
Murli.
तुम्हारी बुद्धि को मोड़ लेगी.
Murli. What will it do? It will turn your intellect.
उन विधर्मियों ने तुम्हारी बुद्धि को मोड़ दिया. पहले तुम तलाक नहीं देते थे, अब तुम तलाक देना सीख गए. बुद्धि मुड़ गई ना.
Those vidharmis turned your intellect. Before, you didn't divorce, and now you learned to divorce. The intellect turned, didn't it?
अब बाबा की मुरली सुनेंगे, तो तुम्हारी बुद्धि फिर मेरी तरफ मुड़ जाएगी.
Now you will listen to Baba's murlis, then your intellect will turn again towards me. It means to Baba.
मुरली नहीं सुनते हो, तो गोया. बाप को भी भूल जाते, टीचर को भी भूल जाते और गुरु को भी भूल जाते.
If you don't listen to the murlis, it means that you forget the father, you forget the teacher and you forget the guru as well.
27 अक्टूबर 2002.
The fourth page of the Vani of 27 October 2002.
ये भी जैसे तलाक हो गया.
It is as if a divorce took place.
अगर भूल जाते हो,
if you forget,
बाप को भूले या टीचर को भूले या सदगति करने वाले सदगुरु को भूले, तो क्या हुआ? जैसे तलाक दे दिया.
What is it like if you forget the father, or if you forget the teacher, or if you forget the true guru who enables the true salvation? It is as if you divorced him.
तुमको भी कितना अटेंशन देना है?
You have to pay a lot of attention.
अभी नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होते रहेंगे.
If you fail now, you will repeatedly fail cycle after cycle.
तो अटेंशन तो देना पड़े.
Therefore, you should pay attention.
अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा.
At the end, everyone will come to know.
किस किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी?
Who studied how much?
जिसने कम पढ़ाई पढ़ी, उसका कम पद.
The position of the one who studied less will be lower.
जिसने ज्यादा ऊंची पढ़ाई पढ़ी, ज्यादा पढ़ाई पढ़ी, उसका उच्च पद बनेगा.
The position of the one who studied the higher teaching, who studied more, will be higher.
सब कहते हैं शांति चाहिए.
Everyone says we need peace.
शांति चाहिए, गोया क्या चाहिए?
The need of peace means the need of what?
दुख दर्दों से मुक्ति चाहिए.
The need of the liberation from sorrows and pains.
कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे.
They say that everyone remembers in sorrow.
कहते हैं तो झूठ थोड़ी कहते हैं.
They say so they don't lie.
जब दुख पड़ता है तो याद आता है.
They remember when sorrow arises.
सुख में कोई सत्य को त्रेता में देवता है, भगवान को याद करते ही नहीं.
No one remembers in happiness. the devotees in the golden, silver ages don't remember God.
तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख होता है.
So there is happiness for half a cycle and sorrow for half a cycle.
जब आधा कल्प दुख होता है तो तुम भगवान को याद करते हो.
When there is sorrow for half a cycle, you remember God.
भले जानते नहीं तो भी याद करते हो.
It doesn't matter that you don't know him, still you remember him.
और सुख की दुनिया में सत्य को त्रेता में वहाँ भगवान को याद कोई करता नहीं है.
And over there, in the world of happiness, in the golden silver ages, no one remembers God.
सुख दुख का खेल भारत पर ही है.
The game of happiness and sorrow is based on Bharat itself.
पूरा सुखी और पूरा दुखी भारत ही बनता है.
Only Bharat becomes completely happy and completely sorrowful.
और धर्म?
And the other religions?
और धर्म के लोग ना ज्यादा सुखी बनते हैं ना ज्यादा दुखी बनते हैं. अच्छा.
The people of the other religions neither become too happy nor do they become too sorrowful. All right.
तो और धर्मों में गिनती किसकी किसकी है?
Therefore, who is counted among the other religions?
Islam is the Christian.
Students are saying, the followers of Islam, the Buddhists, the Christians. Is it the followers of Islam, the Buddhists, the Christians? Those who come from the Copper Age, are they counted? Is the Moon dynasty not counted?
ब्रह्मा की सोल सृष्टि के आदि में संगम युग में नहीं दिखाई है साकार रूप में.
On the picture of the ladder, the soul of Brahma is not visible in the corporeal form at the beginning of the world in the confluence age.
सबसे ऊंची स्टेज है ना?
It is the highest stage, isn't it?
सबसे ऊंची स्टेज का सुख है वो अतीन्द्रिय सुख शरीर से नहीं भोगती.
This is the happiness of the highest stage. He doesn't experience through the body that super sensuous happiness.
तो ऊंचे से ऊंचा सुख लेती है क्या? नहीं, ऊंचे से ऊंचा सुख भी नहीं लेती.
Then does he experience the highest happiness? No, he doesn't experience the highest happiness.
और कलयुग के अंत में जब अंतिम सीढ़ी आती है तो भी खड़ी हुई है.
And even at the end of the Iron Age, when the last generation comes, he is standing.
वो विकारों में पतित होकर के पड़ी हुई नहीं है.
He isn't lying, having become impure and degraded in vices.
कांटों की सैया पर पड़ी हुई नहीं दिखाई गई. इससे क्या साबित होता है?
He isn't shown as lying on the bed of thorns. What does it prove?
नहीं.
Students are saying something. No, neither he becomes the most impure and degraded, nor does he become the purest, the soul of Krishna.
Christians ki atma bhi na jyada patit banti hai na jyada pavan banti.
The soul of the Christians as well. Neither they become the most impure and degraded, nor do they become the purest.
सबसे ज्यादा सुख और सबसे ज्यादा दुख कौन भोगता है?
Who experiences the most happiness and the most sorrow?
भारत.
भारत does experience.
तो सारी कहानी भारत के ऊपर सुख दुख के नाटक की बनी हुई है.
So the entire story is made on the basis of Bharat's spectacle of happiness and sorrow.
तुम तो कहेंगे हम ही देवता थे.
अच्छा. You will say, we ourselves used to be deities. All right.
हम ही क्षत्रिय बने.
We ourselves became kshatriyas.
हम ही तो वैश्य बने.
We ourselves became vaishyas.
हम ही शूद्र बने. अरे
we ourselves became Shudras. Well, were we ourselves the deities?
हम ये कहता कौन है?
We. Who says that?
सो देवता थे माने कौन से देवता थे?
where ourselves the deities, meaning which deities we were. Students are saying the moon dynasty. We ourselves were the deities who are worshipped in the temples. Who were those bodily deities who are worshipped in the temples? We used to be them. We who studied directly from God. The soul of Krishna, the soul of Radha, neither study the teaching directly. Nor do they become deities. Deities from the human beings in the confluence age. For this reason it was said, you will say. This one will not say. Who? Krishna will not say. You will say. What will you say?
Hame hi devata, so hame hi kshatriya, so hame hi vaishya, aur hame hi sudra bante hain. Pehle pehle kaun bante hain?
We ourselves become deities, kshatriyas, vaishyas, and we ourselves become shudras. Who becomes this first of all?
Acha pehla devata kaun banta hai?
Pehla brahman to pehla.
जिसको सूर्य का टाइटल है वो पहले देवता भी बनता है, पहला क्षत्रिय भी, पहला वैश्य, पहला शूद्र.
All right. Who becomes the first deity? A student is saying, the first Brahmin becomes the first deity. The one who has the title of son becomes the first deity. And the first Kshatriya, the first Vaishya, and the first Shudra. So no one knows the meaning of Hamso. The father says Manmanabhav. Then Madhyajibhav. What should we do in order to know? In order to know the meaning of Hamso.
हम वह देवता थे. कौन से देवता थे? देवता थे तो नाम भी तो पता होना चाहिए क्या?
हम सो, we were those deities. Which deities were we? If we were deities, we should also know the names. What?
नाम नहीं पता होना चाहिए हम कौन से देवता थे 33 करोड़ में से.
Shouldn't we know the names? Which deities were we out of 330 millions?
पता होना चाहिए ना?
We should know, shouldn't we?
तो हम 100 देवता थे. अगर कोई पूछे कौन से देवता थे?
So we ourselves were deities. If someone asks, which deities were you?
तो जवाब तो आना चाहिए. जब आप आता नहीं तो बाप रास्ता बताते हैं क्या? मन.
Then you should answer. If there is no answer, the father gives the method. What? Manmanabhav.
क्या? तुम अपनी मन बुद्धि को मेरे में लगा दो तो तुमको पता लग जाएगा कि तुम कौन से देवता थे.
What? Engage your intellect in me. Then you will get to know which deities you used to be.
फिर मध्याजीभव.
Then मध्याजीभव.
जब तुमको पता लग जाएगा कि हम ये है आत्मा, ये है देवता थे.
When you get to know, I was this soul, this deity.
तो तुम अपनी सीट पे सेट हो जाओगे और तुम अपनी ड्यूटी करना शुरू कर दोगे. मध्याजीभव.
You will sit on your seat and begin to perform your duty. मध्याजीभव.
क्या? मेरे लिए यजन करना शुरू कर दोगे कर्मेंद्रियों से.
What? You will start performing the actions through the organs for me.
खुद धारण करें और उनको धारण कराएं तो अहो सौभाग्य.
What a great luck if you assimilate it yourself and make the others assimilate it.
पूरा जो धारण करते हैं वो ही दूसरों को पूरा धारण कराए सकते हैं.
Only the one who assimilates it completely can enable the others to assimilate it completely.
पूरी खुद धारणा नहीं होगी तो दूसरों को भी धारणा कराए नहीं सकेंगे.
The one who himself doesn't assimilate it fully will not be able to enable the others to assimilate.
याद से ही विकल्प विनाश होंगे क्या?
The bad actions will be finished off only through remembrance. What?
क्या?
Why?
ज्ञान से विकल्प विनाश नहीं होंगे.
Won't the bad action be finished through knowledge?
ज्ञान सुनते रहे, दूसरों को सुनाते रहे तो पाप कर्म भस्म नहीं होंगे.
Won't the sinful action be reduced to ashes if we would keep listening to the knowledge, we would keep narrating it to the others?
साधन है.
ज्ञान जो है शास्त्र पढ़ने से भी पाप कर्म नहीं बनते.
A student, that is a means. Knowledge is a means. Yes, knowledge. One does not commit the sinful actions by reading the scriptures either.
तो ज्ञान सुनने सुनाने से भी पाप कर्म नहीं बनेंगे.
So, from listening and narrating knowledge, one will not commit the sinful actions.
लेकिन पाप भस्म नहीं होंगे. भस्म कब होंगे?
But the sins won't be reduced to ashes. When will they be reduced to ashes?
जब हम ऐसे को याद करेंगे जो भस्म रमाने वाला.
Students, through remembrance. When we remember such a one who smears the ash,
कौन है भस्म रमाने वाला?
Who is the one smearing the ash?
शंकर को दिखाते हैं भस्म रमाए हुए. क्या मतलब हुआ?
They show Shankar smeared with the ash. What is the meaning?
शरीर में भस्म रमाई जाती है ना.
The body is smeared with the ash, isn't it?
माने जो भी शरीर है, शरीर की इंद्रियां हैं, उनसे जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं.
Meaning, whatever action is performed through the organs, the bodily organs, it is reduced to ashes.
माने कर्मों का पाप पुण्य उनके ऊपर नहीं लगता.
It means the sin or the merit of actions don't affect him.
अकर्म हो जाते.
They become non-actions.
ऐसी स्टेज में, याद की स्टेज में रहने से, आत्मिक स्थिति में रहने से पाप कर्म बनता ही नहीं, पुण्य भी बनता ही नहीं.
Thanks to remaining in such a stage, in such a stage of remembrance, thanks to remaining in the spiritual stage, the actions don't become sins. They don't become merits either.
तो याद से विकर्म होंगे, विकर्म भस्म होंगे.
So the bad actions will be reduced to ashes through remembrance.
वहाँ गंगा में स्नान करना.
Over there, bathing in the Ganges.
भक्ति मार्ग में होता है. और यहाँ?
Takes place on the path of the religious devotion. And here?
ज्ञान गंगा में स्नान करने की बात.
It is the question of bathing in the Ganges of knowledge.
तो कहाँ गंगा में स्नान करना और कहाँ योग में रह करके पावन बनना? बहुत फर्क पड़ जाता है.
So there is a great difference between bathing in the Ganges and becoming pure by remaining in yoga.
बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए.
The children should value the money of the yajna.
यज्ञ के पैसे की कदर होनी चाहिए.
Should they value the money of the yajna?
और कोई बाहर से पैसा मिल जाए तो.
And if some money is received from outside, then?
यज्ञ से पैसा नहीं मिला.
No money was received from the yajna.
बाहर से किसी दूसरे ने दे दिया.
Someone from outside gave money.
तो उसकी कदर नहीं होनी चाहिए.
Shouldn't that be valued?
यज्ञ के पैसे की क्या, यज्ञ का पैसा किसे कहेंगे?
What is the yajna's money? What will be called the yajna's money?
यज्ञ का पैसा किसे कहेंगे?
Students are saying something. What will be called the yajna's money? A student is saying the wealth that was surrendered.
ये यज्ञ है यज्ञ पिता का, यज्ञ पिता के यज्ञ में जो भी धन स्वाहा किया जाता है।
यस, दिस यज्ञ बिलोंग्स टू द फादर ऑफ द यज्ञ। Whatever wealth is sacrificed on the yajna of the father,
कौन स्वाहा करेंगे? शूद्र स्वाहा करेंगे या ब्राह्मण स्वाहा करेंगे?
Who will sacrifice it? Students, the children. Will the shudra sacrifice it or will the brahmin sacrifice it? Students are saying the brahmins.
जो ब्राह्मण स्वाहा करते हैं बाप के बच्चे बने, पहली शर्त तो है बाप के बच्चे बने।
Whatever the Brahmins sacrifice, having become the children of the father, the first condition is to become the children of the father.
Mukhvanshavali Brahman.
To be the mouth-born Brahmin.
Mukhvanshavali Brahman kab bante hain?
When do they become the mouth-born Brahmins? Students are saying, in the house of the father. When they take birth in the house of the father, when they become the children of the father, when they believe in the father's words emerged from his mouth.
तो ऐसे बच्चे जो बाप के मुख से निकली हुई बात को मानने वाले ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चे हैं, उनकी कमाई का धन यज्ञ में अर्पण होता है।
So the wealth from the earning of such children who believe in the words emerging from the mouth of the father, who are the mouth-born children of Brahma, is sacrificed in the yajna.
वो अर्पण हुआ है ना यज्ञ का हो गया।
That sacrificed wealth belongs to the yajna.
उस यज्ञ की एक एक पाई, एक एक अन्न के दाने की बहुत बहुत वैल्यू हो जाती।
Every penny, each piece of food in the yajna becomes very valuable.
बहुत कदर होनी चाहिए क्योंकि इसी ही धन से भारत स्वर्ग बनता है।
It should be valued very much because from this wealth itself Bharat becomes paradise.
Yeah?
What?
कोई शूद्र दे दिया।
Supposing that some shudra gave money.
अब वो यज्ञ का धन तो है नहीं।
That is not the wealth of the yajna.
जैसे और धर्म संप्रदाय होते हैं तो कोई भी काली कमाई है, ब्राह्मण बने या नहीं बने वो दे देते हैं।
For example, there are the other religious communities. They give whatever black income is there. It doesn't matter whether they are Brahmins or not.
धर्माउ निकाल देते हैं, दे देते हैं, तो उससे स्वर्ग बनने वाला नहीं है। स्वर्ग किससे बनेगा?
They take out and give the donations. Paradise won't be created from that. From what will paradise be created?
जो यज्ञ में ब्राह्मणों का कमाया हुआ धन आता है, यज्ञ में अर्पण किया जाता है, उस धन से स्वर्ग बनेगा।
Paradise will be created from the wealth which comes into the yajna, which is earned by the Brahmins and is sacrificed by them in the yajna.
तुम अपने ही कमाई से अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन करते हो।
You establish your own capital for yourself through your own earning.
क्यों?
Why?
इस धन में क्या खास बात है?
What's so special in this wealth?
जो इस धन से ही स्वर्ग बनता है।
That paradise is created only from this wealth.
और धन दे जो है वो सब झूठे झूठे।
All the other occupations are false occupations.
सब धंधों में नुकसान भी है और सब धंधे दुनिया के झूठे धंधे।
There is a loss in all the occupations and all the occupations of the world are false.
ऐसा कोई भी दुनिया का धंधा नहीं रहा कलयुग के अंत में जो झूठा न हो जाए।
At the end of the Iron Age, there is no occupation left which wouldn't become false.
सब धंधे झूठे।
All the occupations are false.
एक सच्चा धंधा बाप आकर के सिखाते हैं।
The father comes and teaches one true occupation.
और बाप है सच्चा।
And the father is true.
सच्चा बाप आकर के जो रुद्र यज्ञ रचते हैं, उस रुद्र यज्ञ में जो धन स्वाहा किया जाता है वो भी सच्चा है।
The true father comes and creates the Rudra Yagya, in which all the sacrificed wealth is also true.
इसलिए कहते हैं बाप के हाथ में दिया तो 21 जन्म वर्षा मिलेगा।
For this reason, it is said, if one gave it in the hands of the father, one will receive the inheritance of 21 births.
और गुरुओं के हाथ में दिया, कोई मनुष्य गुरु के हाथ में तो एक जन्म का फल देगा।
And if one gave to the hands of the gurus, to the hands of any human guru, it will give the fruit of one birth.
तो ऐसा क्यों कहा?
Why was it said like this?
क्योंकि एक सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं।
It is because one is true and all the others are false.
एक के हाथ में एक हाथ देने वाला और एक हाथ लेने वाला, तीसरे को पता भी न लगे।
One hand is the one which gives and one hand is the one which takes. The third party shouldn't know.
अगर पता भी लग जाता है तीसरे को तो भी उस धन की कीमत कम हो जाती है, कदर कम हो जाती है।
If the third party gets to know, the worth of this wealth goes down. The value goes down.
माने वो उतना बढ़िया स्वर्ग, उतनी ऊंची कोटि का स्वर्ग स्थापन वो धन नहीं करेगा, उसकी कीमत कम हो गई।
It means that wealth will not establish such a great paradise, such high class paradise. Its value went down.
इसीलिए बताया कि यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इसी से भारत स्वर्ग बनता है। इसी से माने?
For this reason, it was said that one should value a lot the money of the yagya, because from that itself paradise is created. In India, from that itself means?
कौन से धन से? यज्ञ में अर्पण किया हुआ या कि पिता को अर्पण किया हुआ जो धन है, उस धन से ही स्वर्ग बनता है।
From which wealth? Paradise is created from the very wealth sacrificed in the yagya, sacrificed to the father of the yagya.
इसलिए बोला तुमको राजधानी स्थापन करने में 50 लाख के खर्चे नहीं होते।
For this reason it was said, it won't cost you even 5 millions to establish the capital.
ये क्या बात?
What's the matter?
ये बात किससे बोली होगी?
To whom must this have been said?
माने तुम बच्चे इतने कम खर्च वाला नसी हो।
It means that you children get maximum results with minimum spending to a great extent.
बाप को फॉलो करने वाले बच्चे हो ना?
You are the children who follow the father, aren't you?
बाप कम खर्च वाला नसी माने?
The father gets maximum results from minimum spending. Bala Nashin, simple living, high thinking.
भाग्य बहुत बाला है, बहुत ऊंचा भाग्य है।
The fortune is high, Bala. The fortune is very elevated.
किसका भाग्य ऊंचा बनता है? जो यज्ञ के धन को कम से कम खर्च करता है।
Whose fortune becomes elevated? Of those who spend the minimum of the wealth belonging to the yagya.
दूसरों के विश्व कल्याण के कार्य में ज्यादा लगाए और अपने लिए कम से कम कर दिए, यज्ञ के लिए भी।
And who engage most in the work for the others, for the benefit of the world, and who for themselves spend the minimum. And it applies also to the yagya.
अगर कम खर्चे में काम निकल सकता है तो ज्यादा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत?
If the work can be done with less money, why to spend more money?
तो बाप है गरीब निवाजी।
So, the father is hospitable to the poor.
क्या? जितना बाप गरीब निवाज है, गरीबों का ध्यान रखता है, उतना और कोई मनुष्य गुरु गरीबों का ध्यान नहीं रखता।
No other human guru attaches so much importance to the poor as the father does. as he is hospitable to the poor.
उन गुरुओं की सभाओं में जाओ जो बड़े बड़े आदमी होंगे वो उनके नजदीक बैठे होंगे गुरुओं के.
Go to the organizations of those gurus. The influential people will sit close to them, close to the gurus.
और बाप गरीबों के ऊपर नजर रखते हैं.
And the father keeps the eye on the poor.
साहूकारों के ऊपर नजर नहीं रहती. देखो एडवांस में कोई भी करोड़पति नहीं होगा.
He doesn't keep the eye on rich men. Look. No one in the advance party is a millionaire.
वो देखा करोड़पति जिसका बैंक बैलेंस करोड़ का रखा हुआ हो.
Did you meet with a millionaire whose bank balance would be of millions?
Assets हो सकती है करोड़ की लेकिन बैंक बैलेंस जब चाहे तब एक करोड़ निकाले और उसको किसी काम में खर्च करे ऐसा कोई नहीं होगा.
The assets can be of millions, but the bank balance? Whenever he would like to, he could take few millions and he could invest it in some work. There won't be anyone like this.
So, बाप है ही?
So the father is hospitable just to the poor.
इससे भारत स्वर्ग बनता है क्योंकि बाप है गरीब निवास.
भारत becomes paradise from this because the father is hospitable to the poor.
गरीबों की एक एक पाई लेकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं.
Having taken every penny of the poor, he establishes paradise.
Yeah.
What?
भावना ज्यादा किसमें होगी?
Who will be more emotional?
गरीबों के अंदर भावना ज्यादा होती है. भले धन थोड़ा देते हैं लेकिन वो भाव से भरा हुआ धन होता है.
The poor ones are more emotional. It doesn't matter that they give little wealth, but this is the wealth filled with emotions.
गरीबों की पाई पाई पड़ेगी, तब वो साहूकार
बनेगा. The poor will add a penny to a penny, and then over there they will become rich people.
Yeah.
What?
कोई ने बैंक में से लाख रुपया निकाला और यज्ञ में दे दिया उससे स्वर्ग नहीं बनेगा.
Someone took from the bank balance 100,000 rupees and gave it to the yajna. Paradise won't be created from this.
कैसे बनेगा स्वर्ग?
How will paradise be created?
तो 4.5 लाख निकलेंगे स्वर्ग के नई दुनिया के मालिक बनने वाले बच्चे वो सारे छोटे छोटे तबके के
450,000 who will emerge, the children who will become the masters of the new world. They belong to the small class.
अगर बड़ा तबक्का है भी किसी का तो वो सब कुछ यज्ञ में अर्पण करके क्या बन जाएगा?
Even if someone belongs to the higher class, he will sacrifice everything in the yajna and he will become what? He will become a beggar.
इसलिए शंकर के लिए कहते हैं हर शंकर की पूजा नहीं करना अपने सामान बना देगा.
For this reason, they say for Shankar, don't worship Shankar. He will make you like himself.
Yeah? भूतिया बना देगा. लंगोटिया.
He will make you also smeared with the ash of the cow dung. He himself wears the loin cloth. He will make you wear the loin cloth too.
गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वो साहूकार बनेंगे.
So the poor will add a penny to a penny, and then over there they will become rich.
स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस होती है ना?
There is health, wealth, and happiness in paradise, isn't there?
अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी.
इफ देयर इज हेल्थ वेल्थ देयर इज आल्सो हैप्पीनेस.
अगर हेल्थ हो वेल्थ ना हो.
इफ देयर इज हेल्थ एंड देयर इज नॉट वेल्थ
तो हैप्पीनेस नहीं हो सकती.
देयर कांट बी हैप्पीनेस.
सत्युग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते.
इन द गोल्डन एज देयर इज हेल्थ एंड वेल्थ सो दे आर ऑलवेज हैप्पी.
वहाँ कभी होते नहीं है.
They never cry there.
और यहाँ?
And here?
यहाँ तो घड़ी घड़ी रोना लगा रहता है.
Here they repeatedly burst in tears.
रोना कोई एक तरह का नहीं होता है.
There isn't one type of crying.
ऐसे नहीं आंखों से आंसू बहे उसी को रोना कहा जाता है.
It is not that it will be said crying for the one who has tears in the eyes.
अपना दुखड़ा दूसरों को सुनाना ये भी क्या है? ये भी रोना है.
Telling the others about one's own sorrow. What is it? This is crying too.
अंदर से भी रोते
हैं. हाँ अंदर से भी रोते हैं कोई.
A student is saying they cry inside. Yes, some cry inside.
खास करके पुरुष जो है अंदर से रोते रहते हैं. जान लेता हूँ सर. तो किसी को बोलेंगे नहीं लेकिन अंदर अंदर से रोते रहेंगे.
Especially men keep crying inside because they have more ego. They won't tell anyone but they will keep crying inside.
और माताएं कड़ा बोली वाली होती है तो बाहर से सारा सुना देती है.
And the mothers? Students are saying outside. The mothers are innocent. Then they tell everything outside.
तो तुमको यहाँ भी रोना नहीं है क्या?
So you must not cry here either. What?
वहाँ सत्संग में कोई रोएंगे नहीं तो तुमको भी यहाँ कैसा बनना है? रोना प्रूफ बनना है.
No one cries over there in the golden age. Therefore, what do you have to become here also? You have to become crying proof.
अगर ऐसा पुरुषार्थ किया है कि यहाँ तुम रोना प्रूफ बन गए तो समझ लो तुम सही पुरुषार्थ कर रहे
हो. If you have made such effort that you became cry proof here, consider that you are making proper effort.
परंतु माया के तूफान रुलाए देते हैं, मुरझाए देते हैं.
But the storms of Maya make you cry, they make you wilt.
Health मिलती है हॉस्पिटल से.
Health is received from the hospital.
और wealth मिलती है पढ़ाई से.
And wealth is received from studying.
ठीक नहीं?
Is it received or not?
तो बीमार होता है तो बीमारी को बीमार वाले व्यक्ति को सफा कहाँ से मिलती है? हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है.
Where does an ill person receive the treatment? He has to go to hospital to the doctors.
यहाँ भी बाप ने रूहानी हॉस्पिटल खोला हुआ
है. He also, the father has opened the spiritual hospital.
बाप कहते हैं ये मन बीज है.
The father says the mind is the seed.
ये मन बीज जब स्वस्थ होगा तो शरीर भी तुम्हारा स्वस्थ हो जाएगा.
When this mind-like seed is healthy, your body will also become healthy.
मन के संकल्पों के आधार पर.
On the basis of the thoughts of the mind.
डॉक्टर लोग भी कहते हैं.
The doctors also say.
भगवान को याद करो ठीक हो जाओगे.
Remember God, it will be all right.
माना वो उनको भी पक्का निश्चय नहीं कि हमारी दवाई काम करेगी या नहीं करेगी.
Meaning they don't have total faith in their medicine, whether it will work or won't.
भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाऊंगा. भगवान के ऊपर भरोसा.
If God wants, it will get all right. Rely on God.
इसका मतलब ये हुआ कि सारी बीमारियां मन के अंदर से शुरू होती हैं.
This means that all the illnesses begin from inside the mind.
मन अगर स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा.
If the mind is healthy, the body will also be healthy.
बीज स्वस्थ है तो पेड़ भी स्वस्थ होगा. तो ये शरीर है जैसे पौधा पेड़ और मन है मन बुद्धि आत्मा बीज.
If the seed is healthy, the tree will be healthy as well. So this body is just like a plant, a tree, and the mind, the soul in the form of the mind and intellect, is the seed.
तो ये भी रूहानी हॉस्पिटल है.
So this is also the spiritual hospital.
रूहानी हॉस्पिटल से तुमको हेल्थ मिलती है.
You receive health from the spiritual hospital.
ये बाप किससे बात करते हैं?
It means the father talks with whom?
आत्मा से बात करते.
He talks to the souls.
माने तुम्हारी आत्मा को तुम्हारी मन बुद्धि आत्मा हेल्दी बनती
है. इट मीन्स दैट योर सोल इन द फॉर्म ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट बिकम्स हेल्थी.
बोल कौन रहा है, आत्मा का बाप बोल रहा है कि देह का बाप बोल रहा है?
हु इज सेइंग दिस? इज द फादर ऑफ द सोल सेइंग इट और इज द फादर ऑफ द बॉडी सेइंग इट?
तो आत्माओं का बाप आत्माओं से बात करेगा या देह से बात करेगा? आत्माओं से बात करता है.
Students are saying the father of the souls. Then will the father of the souls talk to the souls or will he talk to the bodies? Students, to the souls. He talks to the souls.
तो रूहानी हेल्थ देता है.
So he gives the spiritual health.
क्या तुम्हारी आत्मा रूहानी रूप से हेल्दी बनेगी? माने कोई आत्मा के अंदर दुष्ट संकल्प नहीं चलेगा.
योर सोल विल बिकम स्पिरिचुअली हेल्थी. इट मीन्स दैट नो करप्टेड थॉट्स शुड अराइज इन द सोल.
जो भी संकल्प चले वो सब संकल्प चले.
व्हाटएवर थॉट्स अराइज शुड बी द ट्रू थॉट्स.
श्रीमत के अनुकूल सारे संकल्प जब चलने लग पड़ेंगे.
When all the thoughts start to arise in accordance to the Srimad,
तो आत्मा और चेहरा खिला हुआ नजर आएगा.
Then the soul, the face will appear as blooming.
कोई हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं कोई कोई ब्राह्मण तो डॉक्टर उनको देख करके चक्कर देता है. इतना जबरदस्त बीमारी है और तुम्हारा चेहरा खिला हुआ है, बात क्या है?
Someone, some Brahmins go to hospital. Looking at them, the doctors are surprised. Such a grave illness and your face is blooming. What's the matter?
क्या कारण होता है जो चेहरा खिला हुआ दिखाई पड़ता है?
What is the reason that the face appears blooming?
ये रूहानी हेल्थ की निशानी है.
This is the indication of the spiritual health.
तो बोला?
Therefore, it was said.
हॉस्पिटल से हेल्थ
health is received from the hospital
aur padhai se wealth milti
and wealth from the study.
Yahan ruhani padhai se kaun si wealth milti?
What wealth is received here from the spiritual study?
Gyan dhan milta hai. Acha,
the wealth of knowledge is received. All right,
gyan dhan se dhanwan ban jayenge, sukhi ho jayenge.
Will we become rich from the wealth of knowledge? Will we become happy?
अभी भी बोला है.
Students are saying this wealth of knowledge will become the material money. Yes, it was said now.
कोई अगर ज्ञान धन को यूज करता है दूसरों को सुनाता है भले उसके पास एक कुटी छदाम भी ना हो.
If someone uses the wealth of knowledge, he narrates it to the others, even though he is completely penniless.
सुबह से शाम तक अगर ईश्वरीय सेवा करेगा तो चाहे दुनिया में कितना भी अकाल पड़े लेकिन वो बाप का बच्चा जो ज्ञानी तो आत्मा होगा और दूसरों की सेवा करेगा वो भूख नहीं पड़ेगी.
इफ ही डज द कॉटनी सर्विस फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द इवनिंग इट डजंट मैटर व्हाट फैमिन ब्रेक्स आउट इन द वर्ल्ड बट दैट चाइल्ड ऑफ द फादर who will be a knowledgeable soul and will serve the others can't suffer from hunger.
Duniya ke karodpati arabpati bhook marenge lekin baap ka bachcha bhook nahi marega.
The millionaires and the multimillionaires of the world will suffer from hunger but the child of the father will not suffer from hunger.
To kitni un gyan ratno ki value ho gayi. वो ज्ञान रत्न एक फूल रत्नों की कोटि के बन गए.
सो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ दोस ज्वेल्स ऑफ नॉलेज? दोस ज्वेल्स ऑफ नॉलेज विल बिकम द फिजिकल ज्वेल्स.
तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं.
लुक माय चिल्ड्रन आर सो पुअर.
मेरे बच्चे कितने गरीब हैं. कैसे गरीब हैं?
My children are so poor. Poor of what?
तीन पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोलते हैं.
they open the hospital on the ground of 3 feet.
Mana?
Meaning?
दुनिया की जो हॉस्पिटल खोल रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी जगह लेते हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं कितने वेतन के लंबे चौड़े वेतन के डॉक्टर रखते हैं कितना पैसा दवाइयों पर खर्च करते हैं.
The hospitals which are opened in the world occupy such big places. They build such huge buildings. They employ the doctors for big salaries. They spend a lot of money for the medicines.
मैं जो हॉस्पिटल खोलता
हूँ,
उसी में खाना खा लो, उसी एक कमरे में, उसी में सो जाओ, उसी में झाड़ू पोछा लगा के क्लास लगा लो.
And the hospital which I open, eat in that one room, sleep in that one room, sweep and wipe the floor, and have the class in it.
तो गरीबों का हॉस्पिटल हुआ ना?
So, this is the hospital of the poor, isn't it?
बोला कितने गरीब हैं? 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं.
It was said, how poor they are. They open a hospital on the ground of 3 feet.
ज्यादा जगह भी नहीं है.
There is not even much space.
कोई कोई कहा गीता पाठशालाओं में तो जगह ही इतनी है बस 5 पाउंड लोग बैठ पाते हैं. फिर भी गीता पाठशाला तो खुली हुई है.
In some schools of the Gita, there is so little space that only 5 pandavas can sit. Anyway, the school of the Gita is opened.
ऐसा हॉस्पिटल खोल देते हैं जहाँ से सबको हेल्थ वेल्थ मिल सकती है.
They open such hospitals from where everyone can receive health, wealth.
Achha.
All right.
Meethe meethe sikil de bachon ki.
For the sweet, long lost and found children.
Aur woh nahi.
What? Not for the others.
Meethe meethe. Meethe swabhav ke hain.
Sweet. Those who are sweet natured.
खुद मुख में मिठास भरा हुआ है.
The mouth is filled with sweetness.
दृष्टि में मिठास भरा हुआ है.
The eyes are filled with sweetness.
वाइब्रेशन में मिठास भरा हुआ है. ऐसे मीठे मीठे बच्चों को.
The vibrations are filled with sweetness for such sweet children.
सिकिंदे बच्चों.
For the children long lost and found after a long time.
सिकिंदे बन.
Sikhilde means?
Sikhilde. कोई बच्चा जैसे बाप का खो जाता है ना और वर्षों खुआ हुआ रहे फिर बड़े होकर वो बच्चा अचानक मिल जाए.
Some child of the father would get lost and would be lost for years. Having grown up, that child would be suddenly found.
तो वो बाप और बच्चा कितने प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको कहते हैं सिख से मिले हुए.
Then that child and the father meet with each other with great love. It will be called meeting with great love.
तो यहाँ भी बच्चे कैसे हैं? कैसे? हम कब खो गए?
So which children are also here? Students found after a long, long time. How? When were we lost?
कब खो गए?
When were we lost? Were we lost sometime? A student is saying, at the beginning. Yes.
हम आत्मा रूपी बच्चे भी जब यज्ञ का आदि था तो उस समय बाप के बच्चे बने थे और बनने के बाद कारण या कारण बाप से छोड़ गए.
We too, the children in the form of the souls. When there was the beginning of the yajna, at that time we became the children of the father. And after having become it, for some or the other reason, we got separated from the father.
तो अब बिछड़ने के बाद इतने लंबे वर्षों के बाद कोई कोई को तो 60-70 वर्ष होने आए अब मिल रहे.
Then now we are meeting after so many years of becoming separated. For some, it is going to become 60-70 years. Now they are meeting.
तो बहुत लंबा टाइम हो गया ना?
So it became very long time, didn't it?
तो सिकिल दे बच्चे प्रति मात पिता.
So for the children long lost and found after a long time of the mother and the father, whose?
Mata pita.
Of the mother and the father.
Ek ka nahi.
Not of one.
Mata ka bhi? Aur pita ka bhi. Kahan hai mata? Mata devi.
Of the mother and also of the father. Where is the mother? Did you see the mother?
Are mata dekhi kya? Kisi ne dekhi
hai? Oh, did you see the mother? Here, did anyone see her?
Kisi ne dekhi? Photo dekha.
No one saw her. A student is saying, we saw the photo. You saw the photo.
ये क्या बात? बच्चा माँ से पैदा हो और देखा ही ना, होता है क्या?
And what is this? The child would be born from the mother and would never have seen her. Does it happen like that?
Mata kaise keh diya?
Ardhanarishwar hai. Unhi mein mata aur pita dono.
On the basis of what was she called mother? A student, Ardhanarishwar. In the Murli, both the mother and the father.
Mata to istri hogi.
But the mother is a woman.
Pita purush hota hai.
The father is a man.
Jagadamba?
Students are saying, the senior mother, Jagadamba? No, one thing was said in the Murlis.
Bharat mein purush ki ek istri mar jati hai, to kehte hain ek dhuti gayi, ab dusri lete hain.
In Bharat, when one wife of a man dies, they say, one shoe went away, now we take another.
Ye Brahma bhi purana tar hai na?
This Brahma is also an old body, isn't he?
Kya ishara diya?
What hint was dropped?
Purana tar hai na? Purani juti hai na? Iska matlab kya hua? Baba kya ishara de rahe?
He is an old body, isn't he? He is an old shoe, isn't he? What is its meaning? What hint is Baba dropping?
ये जूती अब छूटने वाली है. अब नई जूती आने वाली है. तो ब्रह्मा का पुराना तन छूट गया. ब्रह्मा का पुराना तन छूटे ना. तो नया तन कौन सा मिला?
This shoe is going to be given up. Now the new shoe is coming. So, the old body of Brahma was left. The old body of Brahma was left, so which new body was received?
Jagadamba. Abhi, Jagadamba abhi. Dikhai nahi padti bachcho
ko. Jagadamba was received. Now, Jagadamba doesn't show up to the children. She is veiled.
Dikhai nahi padti. Palna, mili nahi rahi bachcho ko. Tarap rahe.
She doesn't show herself. The children are not receiving the sustenance. They are restless. Meanwhile, the mother of the Sun dynasty was revealed. What was said? What was said now in the Avyaktvani? It was said that two souls from eight deities got revealed.
दो की प्रत्यक्षता हुई. एक योगी और एक योगिनी.
The revelation of two took place. One yogi and one yogini.
जो योगिनी है उसको कहा माता का टाइटल, माने सूर्यवंशियों की माता.
The title of the mother was set for yogini, meaning the mother of the Sun dynasty.
Samadhi mata nahi. Iski mata? Suryavanshiyon ki mata.
Not the mother of all. Whose mother? The mother of the Sun dynasty.
Jo direct gyan surya se mile hue hain, padhai padhte hain, aur direct gyan surya se varsha lene wale hain, unki mata.
The mother of those who have met the Sun of knowledge directly, who study, who will take the inheritance directly from the Sun of Knowledge.
Sab use? पहचानते भी नहीं और जानते भी
नहीं. Not everyone recognizes her and knows her.
तो बोला याद क्या बाप दादा का.
So it was said, the remembrance and love of Bab Dada.
एक तो माता पिता का याद प्यार और दूसरा बाप दादा का याद प्यार. अच्छा.
One is remembrance and love of the mother and the father, and the other, students of Bab Dada. All right.
माता से कनेक्शन है फिर.
Then, do you have a connection with the mother?
चिक्की की पार्टी आती है? नहीं आती माता की चिक्की नहीं आती है? आती नहीं आती जरूर.
A student is saying yes. Yes? Where? Do the letters come? Don't they come? Don't the letters from the mother come? Hmm? Don't they come? Certainly, they must be coming.
अच्छा सेवा भेजते हैं यदि सेवा भेजते हैं तो माता चिट्ठी का जवाब नहीं देती क्या ये सेवा हमें मिली.
All right, you send the service to the yagya. It means contributions to the yagya. Then doesn't the mother reply to that letter that the service was received?
ना? अभी प्रैक्टिकल में चिट्ठी आती है कि नहीं सेवा की स्वीकृति की.
Students are saying something. No. Now, in reality, do the letters confirming the service come or not?
आती है. तो माता से ही तो आती है.
They come. So, they come from the mother.
माता है तो माता की भुजाओं के द्वारा वो भुजाई की चिट्ठी लिखेगी. या तो खुद लिखेगी.
If there is the mother, then through the arms of the mother, those arms will write the letter, or she will write it herself.
तो चिट्ठी आती है माने प्रैक्टिकल में है ना. तो माता पिता. अच्छा ईमेल आता है.
So the letters come. That means she really exists. Therefore, of the mother and the father. All right. Does the email come?
नहीं आता. ईमेल आता है. ईमेल आता है इससे क्या साबित होता है?
Doesn't it come? Students, it comes. The email comes. So what does it prove?
बाबा तो काका का भी नहीं जानता कंप्यूटर का.
Students, the mother, from the mother. Someone said, from Baba. Baba doesn't know even ABC of the computers.
वो लोग तो जवाब देंगे. तो बोला, माता पिता बाप दादा. ये बाप दादा कौन?
Those people, just those people will respond. So it was said of the mother and the father, of Bab Dada. Who is this Bab Dada?
माता पिता तो अलग अलग हो गए. फिर बाप दादा कौन हुए?
The mother and the father are separate. Then who is Bab Dada?
Rama Krishna.
Students, Radha and Krishna. Ram the father and Krishna the child.
दादा लेकर की आत्मा जो चंद्रमा के रूप में प्रवेश है वो दादा हुआ.
The soul of Dada Lekraj, who enters Ram in the form of the moon. He is the elder brother.
Srishti ka pehla patta hua.
He is the first leaf of the world.
Bana sabka bada bhai hua. 500 crore manushya atma jo bhi hain, un sabka bada bhai.
Meaning, he is the elder brother of everyone. The elder brother of everyone. All the 5 billion human souls.
और राम वाली आत्मा बाप सबका बाप और दादा.
And the soul of Ram, the father of everyone, and the Dada, the elder brother.
दोनों का याद प्यार. Good morning.
The remembrance and the love of both, and good morning.
क्या कभी good night नहीं करते?
What? never says good night. गुड नाइट
आदि में आते हैं तो क्या करते हैं? गुड नाइट करते हैं.
What does he say when he comes into Gulzar Dadi? He says good night. It's over. Meaning at the time of getting separated, they say good night.
Good morning.
Good morning. At the time of meeting.
Ruhani baat. Ye to ek yaad pyar aur good morning ki baat hui. ये अलग है करने वाला. याद प्यार किसने दिया? गुड मॉर्निंग किसने किया?
द स्पिरिचुअल फादर. नाउ दिस वॉज द सब्जेक्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, लव एंड गुड मॉर्निंग. द वन हु सेज इट इज सेपरेट. हु सेड रिमेम्बरेंस एंड लव एंड हु सेड गुड मॉर्निंग?
माता पिता ने और बाप दादा ने.
द मदर, द फादर एंड बाप दादा.
लेकिन आगे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते.
But further on, namaste. From the spiritual father to the spiritual children.
वो बात अलग. बाप दादा और माता पिता अलग.
That subject is separate. बाप दादा and the mother, the father are separate.
और रूहानी बाप सेवा अलग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का.
And the spiritual father, students, Shiva. Shiva is separate. From the spiritual father to the spiritual children.
जो रूहानी स्टेज में टिके हुए हैं, उन बच्चों को नमस्ते.
For those children who are stable in the spiritual stage, namaste.
नमस्ते माना माता पिता बाप दादा नमस्ते नहीं करते हैं.
Namaste means the mother and the father. बाप दादा डोंट से नमस्ते.
ये क्या बात हुई?
व्हाट्स द मैटर?
उनको देह है ना, वो देह के अंदर है. तो जो देह के अंदर है, देह का धर्म का पालन करना होता है. क्या?
दे हैव द बॉडी, हैवंट दे? दे आर इन द बॉडीज. दोज हु आर इन द बॉडीज हैव टू सस्टेन द धर्म ऑफ द बॉडी. व्हाट?
इसलिए भारतीय परंपरा में माँ बाप को भी बच्चों को पांव छू देंगे? नहीं.
For this reason, do the mother and the father have to touch the feet of the children in the tradition of Bharat? No.
वो बड़े हैं और बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं. पांव छूते माने नमन करते हैं, बुद्धि माथा झुकाते हैं.
They are elder, and the children touch the feet of the mother and the father. Touching the feet means to bow. They bow the head, the intellect.
तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते.
So namaste from the spiritual father to the spiritual children.
उसको अपनी देह नहीं है, तो रूहानी बाप जो है बच्चों को नमस्ते करते हैं. नमस्ते माने झुकते हैं. क्यों झुकते हैं?
He doesn't have his body, so the spiritual father says namaste to the spiritual children. Namaste means that he bows. Why does he bow?
उनको झुकने की क्या दरकार? देह है. हाँ, उनको देह नहीं, ना ऊंचे से ऊंचे बनता है, ना नीचे से नीचे बनता है. इसलिए उनको झुकने में भी कोई कोई आपत्ति नहीं है.
प्रभाव मुक्त है. प्रभाव मुक्त है.
Why does he need to bow? Neither he has the body, nor does he become the highest or the lowest. For this reason, he has no objections to bow.
आज कितनी तारीख हुई?
29.